दोस्तों, काफी लंबे अंतराल के बाद मैं आपके समक्ष एक बार फिर नई कहानी लेकर आया हूँ। इस लंबे अंतराल के लिए मैं आप सभी श्रोताओं से तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। दरअसल कार्डियक अरेस्ट के बाद से मेरा स्वास्थ्य लगभग डामाडोल सा ही है। आज जब मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ तो आपको सुनाता हूँ हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी लूट। जून का महीना, आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं। दोपहर के 1:30 बजे हैं। रेलवे फाटक के पास वाली सड़क के किनारे एक वैन खड़ी है। फाटक से लेकर सड़क के उस किनारे तक जहां वो वैन खड़ी है एकदम सुनसान है। वैसे भी ये सड़क लिंक रोड है, जिस पर आधा किलोमीटर चलने पर मेन हाईवे आता है। पता नहीं ये वैन कब से वहाँ पर खड़ी है और इस चिलचिलाती धूप में उबल रही है। तभी वैन के ड्राइवर साइड से लड़खड़ाते हुए एक आदमी वैन से नीचे उतरता है। उसके शरीर पर सिक्योरिटी कंपनी की वर्दी है। वह घूमकर वैन के पिछले हिस्से की तरफ जाता है और खुले हुए गेट के अंदर झांकता है। अंदर दो गार्ड बेहोश पड़े हैं। सतीश, सतीश, फयाज, ए फयाज। वो जल्दीबाजी में अपने मोबाइल से एक नंबर डायल करता है।
क्या बात कर रहा है साहिल?
कुछ समझ नहीं आ रहा कुलकर्णी साहब। सतीश और फयाज दोनों बेहोश हैं। मैं बहुत मुश्किल से अपनी आंख खोल रखी है। तीन पेटियां खुली पड़ी हैं और तीनों खाली हैं। एक पेटी वैसे के वैसे ही है।
ये सब हुआ कैसे?
कुलकर्णी साहब, मुझे नहीं पता। मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ।
तू रुक साहिल, मैं तुझे अभी फोन करता हूँ। सोचने दे मुझे।
सर, सर, एक बुरी खबर है।
क्या? क्या सिक्योरिटी सो रही थी? क्या बोल रहा है तू कुलकर्णी?
मुझे भी कुछ ज्यादा पता नहीं है सर। साहिल ने जो बताया वो मैंने आपको बता दिया। उसकी भी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। फिर भी मेरे कहने पर वो सतीश और फयाज को लेकर हॉस्पिटल गया है। पता नहीं यह अनिल गोम्स कहां मर गया।
कुलकर्णी, तुझे पता है ना, 3 करोड़ थे उस वैन में।
जानता हूं सर। साहिल ने बताया कि 4 में से 3 ट्रंक के ताले टूटे हुए हैं और कैश गायब है। मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी है सर।
अबे कुलकर्णी, पुलिस कंप्लेन तो मैं करूंगा तुम्हारी एजेंसी के खिलाफ। छोड़ूंगा नहीं मैं। ये सारा सिक्योरिटी का फॉल्ट है। और वो चौथा ट्रंक, वो तो लॉक है ना, उसकी हिफाजत कौन करेगा हॉस्पिटल में? तू करेगा? मुझे बता, वो वैन लेकर कौन से हॉस्पिटल में गए हैं वो लोग?
जी जी सर, गुलमोहर हॉस्पिटल। इधर गुलमोहर हॉस्पिटल में। सर, सर, मेहरबानी करके इन दोनों को देख लीजिए। बहुत बहुत देर से बेहोश पड़े हैं ये दोनों। साहब, साहब, मैं ही जानता हूँ कि मैं कैसे गाड़ी चलाकर यहाँ तक आया हूँ। साहब, साहब, बहुत बहुत चक्कर आ रहा है साहब। सब कुछ घूम रहा है। देखो, ये पुलिस केस है। जब तक केस फाइल नहीं हो जाता, हम कुछ नहीं करेंगे।
दूर कॉरिडोर में एक इंस्पेक्टर प्रकट हुआ। वह अपनी हील वाली सूज को चटकाता हुआ इधर ही चला आ रहा है।
हेलो डॉक्टर, इंस्पेक्टर पीएन कामत, राजनगर पुलिस चौकी से। ये 4G सेफगार्ड कंपनी से हमें ही फोन आया था। गाड़ी तुम ही चला रहे थे क्या?
जी जी साहब, मैं ही वैन चला रहा था। साहिल बनारसी मेरा ही नाम है साहब। ये लोग बहुत देर से बेहोश पड़े हैं और डॉक्टर साहब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।
डॉक्टर साहब, ये केस अब मैं हैंडल कर रहा हूँ। आप ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए प्लीज।
श्योर सर।
सिस्टर, इन्हें तुरंत इमरजेंसी OT में शिफ्ट करवाइए। जल्दी कीजिए।
हाँ तो साहिल बनारसी, एग्जैक्टली क्या हुआ था?
साहिल साहिल साहिल, ये सब कैसे हुआ?
आप कौन?
मैं सत्येंद्र मिश्रा, यूनियन बैंक सेंट्रल ब्रांच राजनगर का मैनेजर हूँ सर। और जी मैं रमेश कुलकर्णी, 4G सेफगार्ड एजेंसी का मैनेजर।
मिश्रा जी, कुलकर्णी जी, आप मेरे हेड कांस्टेबल दयाल के साथ नीचे जाइए और वैन चेक कीजिए, कितने की लूट हुई है वो बताइए।
हाँ तो साहिल बनारसी, शुरू से पूरी बात बताना, बैंक से कितने बजे निकले थे, कहाँ रुके थे, पूरी बात।
साढ़े नौ बजे, हाँ 9:30 बजे के करीब हम लोग बैंक से निकले थे।
थोड़ी देर बाद ही हमने लिंक रोड पकड़ लिया और डिस्ट्रिक्ट सेंटर क्रॉस करते ही अनिल गोम्स जो गनमैन की ड्यूटी पर था और वैन में आगे ड्राइवर सीट के बगल में बैठा था, बोला कि चलो चाय पी लेते हैं।
सतीश भाई,
फयाज भाई।
हाँ भाई, क्या हुआ?
देखो भाई, 10 बजने को हैं, वो आगे टोल नाके पे वैसे ही दिमाग खराब करने वाला ट्रैफिक जाम होगा। चाय भाई यही पी लें क्या? थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे।
हाँ हाँ ठीक रहेगा ये। क्या कहते हो साहिल मियाँ, गाड़ी ड्राइव करते हाँ हूँ तो बोल ही सकते हो क्यों?
हाँ ठीक है, तो फिर आगे ले लो साइड में।
रोज की तरह अनिल गोम्स चाय का थर्मस अपने साथ लाया था। बैंक से चलते वक्त थर्मस में चाय बैंक के पैंट्री से भरवाई थी गोम्स ने। 5-10 मिनट लगे होंगे सर, चाय पीकर मैंने वैन दोबारा स्टार्ट कर ली। टोल नाका क्रॉस करने में करीब 15-20 मिनट लगे होंगे साहब। तब उसके बाद अचानक से सर भारी होने लगा, चक्कर सा आने लगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बस गाड़ी चलाता रहा साहब।
अच्छा वो ठाकुर द्वारा घंटा घर से थोड़ा आगे, वहाँ से मैंने लेफ्ट लिया साहब। इसके बाद साहब वो जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर का जो रेलवे फाटक है वहाँ पहुँच गए। थोड़ी देर बाद सर जोर जोर से घूमने लगा, नींद इतनी आ रही थी कि सड़क पर नज़र रखना मुश्किल हो गया।
यार गोम्स एकदम चक्कर सा आ रहा यार, सब कुछ ऐसे लग रहा जैसे सब घूम रहा हो।
क्या अनिल गोम्स तभी होश में था?
मुझे खुद का होश नहीं था, आंखें खुल नहीं रही थी, सब धुंधला नज़र आ रहा था। मैंने सिर्फ उसकी आवाज सुनी, साहिल एक काम कर, गाड़ी साइड में लगा ले, थोड़ा आराम कर ले, फिर चलते हैं। हाँ मैंने उसकी बात मान ली साहब और रेलवे फाटक के पास वाली सड़क के किनारे वैन लगा दी। स्टेरिंग पे सर रखकर जैसे बैठा, पता नहीं कब आंख लग गई, और जब आंख खोली तो देखा तो 1:30 बज गए थे। बाजू में देखा तो गोम्स नहीं था, पीछे जाके देखा तो सतीश और फयाज दोनों सो रहे थे, पेटियों के ताले टूटे पड़े थे, पैसे गायब थे। मैं घबरा गया साहब, मैंने कुलकर्णी साहब को फ़ोन किया और उनके कहने पर यहाँ तक गाड़ी लेकर आ गया साहब।
उधर नीचे हॉस्पिटल पार्किंग में, मिस्टर मिश्रा क्या आप बता सकते हैं इन चारों ट्रंक में टोटल कितने रुपए थे?
जी कुल मिला के 3 करोड़ थे, चारों ट्रंक में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, हर ट्रंक में 75 लाख।
इसका मतलब 2.25 करोड़ रुपए गायब हैं।
जी सर,
मैंने चेक कर लिए, इस लॉक ट्रंक में 75 लाख तो हैं, पर बाकी के 2.25 करोड़ आप फिक्र मत कीजिए, हम जांच कर रहे हैं, हमारे कामत सर लगे हैं।
इधर हॉस्पिटल में साहिल के बयान लेने के बाद इंस्पेक्टर कामत ने कॉरिडोर में डॉक्टर को आते देख उसकी तरफ लपके,
उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड में से किसी को होश आया डॉक्टर?
नहीं, दोनों को अभी तक होश नहीं आया सर, लेकिन हमने उन दोनों के ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए ले लिए हैं।
और साहिल बनारसी का?
कैश डिलीवरी वैन का ड्राइवर साहिल बनारसी, जो कुछ मिनट पहले इंस्पेक्टर कामत को अपना बयान दर्ज करवा रहा था, अब जमीन पर बेहोश गिरा पड़ा था।
वार्ड बॉय, अर्जेंट स्ट्रेचर लाओ, पेशेंट को इमरजेंसी रूम में शिफ्ट करना है, हरी अप।
तभी कांस्टेबल दयाल वहां आते हैं। सर, यूनियन बैंक सेंट्रल बैंक के मैनेजर मिस्टर सत्येंद्र मिश्रा ने लिखित बयान दिया है कि कुल रकम 2.25 करोड़ है, जो 3 पेटियों से लॉकर तोड़कर गायब किया गया है। एक बात और सर, तीसरा गनमैन अनिल गोम्स अपनी राइफल के साथ गायब है।
दयाल, क्या तुम्हें वैन में कोई थर्मस और चाय के कप मिले हैं?
नहीं सर, कोई नहीं, ब्लड रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि चाय में क्या मिलाया था।
सर, बैंक मैनेजर मिश्रा का कहना है कि ट्रंक खोलने का लॉक कोड केवल सतीश के पास था।
दयाल, अगर सतीश इन्वॉल्व होता तो लॉक तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद सतीश, फयाज और साहिल इन्वॉल्व नहीं है गोम्स के प्लान में,
लेकिन 3 मजबूत ट्रंक तोड़ने के लिए औजार भी लगे होंगे और आदमी भी।
दिन दहाड़े बीच रास्ते में इतने कम समय में इतना सारा कैश कहीं और ट्रांसफर करना, ना, बिना प्लान टीम वर्क के पॉसिबल ही नहीं।
दयाल, अनिल गोम्स की फोटो एजेंसी से लेकर सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। सुमेरगंज पुलिस को खबर करो कि अनिल गोम्स के पुश्तैनी घर पर दबिश दे।
अगले दिन सुबह 10 बजे गुलमोहर हॉस्पिटल।
इंस्पेक्टर कामत, सिक्योरिटी गार्ड सतीश और फयाज के ब्लड सैंपल से स्लीपिंग पिल्स के ट्रेसेस मिले हैं। ड्रग बहुत ही हैवी था, इसीलिए तो उसका असर अभी तक खत्म नहीं हो रहा है।
क्या साहिल बनारसी, जो वैन ड्राइव करके यहां तक पहुंचा था, उसे भी नींद की गोलियां खिलाई गई थी?
हाँ, लेकिन बहुत कम मात्रा में, कह सकते हैं कि ना के बराबर, इसीलिए तो वह वैन ड्राइव करके यहां तक आ गया।
तीनों को होश कब तक आएगा?
सतीश और फयाज को पूरी तरह से होश में आने में थोड़ा वक्त और लगेगा। हाँ, साहिल एकदम ठीक है, उसे अभी ग्लूकोज चढ़ रहा है, थोड़ी देर बाद उसे हम डिस्चार्ज दे सकते हैं।
डॉक्टर, मेरी परमिशन के बगैर आप किसी को डिस्चार्ज नहीं देंगे। पहले हम क्वेश्चनिंग करेंगे, हो सकता है हमारी क्वेश्चनिंग के बाद इसे दोबारा एडमिट करने की जरूरत पड़े।
2 घंटे बाद 4G सेफगार्ड एजेंसी के ऑफिस में।
कुलकर्णी साहब, डकैती तो एक न एक दिन होनी ही थी, चोर से खजाने की चौकीदारी जो करवा रहे थे तुम, इतने बड़े कैश की जिम्मेदारी और लोडेड हथियार जिसे देते हो, उसका बैकग्राउंड नहीं चेक करवाते क्या?
सर, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन हमारे लाइन में आदमी लोगों की भारी कमी है। मुंह मांगा पैसा देने के बाद भी हमें अच्छा आदमी नहीं मिलता, इधर उधर से आदमी लोग जुगाड़ करने पड़ जाते हैं, उसमें भी हम स्ट्रिक्ट हो जाएं तो।
फालतू के कारण तुम बैंक मैनेजर को सुनाना, मुझे नहीं। ज्वाइनिंग फॉर्म भरवा लेते हो, एड्रेस तक वेरीफाई नहीं करते क्या? अगर ये वेरीफाई करते तो आज ये कांड न होता। जानते हो, जब सुमेरगंज की पुलिस गोम्स के एड्रेस पर गई तो उसके बाप ने क्या बोला? गोम्स की गलत हरकतों की वजह से उसे घर से निकाल दिया है, 7-7 रॉबरी केस में इन्वॉल्व है अनिल गोम्स,
और आपने उसे लोडेड गन के साथ उसे कैश डिलीवरी का काम दे दिया। 2.25 करोड़ की लूट हुई है, बहुत जवाब देने पड़ेंगे कुलकर्णी साहब।
सतीश, फयाज और साहिल बनारसी के भी बैकग्राउंड आपने चेक नहीं किए होंगे, आपका ये काम भी हम ही करेंगे कुलकर्णी साहब।
उधर गुलमोहर हॉस्पिटल में।
साहब, 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 कहाँ ले जा रहे हैं आप?
पूछताछ करने के लिए साहिल थाने ले जा रहे हैं।
लेकिन लेकिन मुझे जो पता था सब बता दिया है मैंने। साहब, वैसे भी मैं काफी थक गया हूँ, घर जाकर थोड़ा आराम करता हूँ। साहब,
आराम तो तू पुलिस स्टेशन में भी जाकर करेगा, हम लोग इतने बुरे भी नहीं हैं, चल तू।
साहिल का दिल किसी अनजान भय से बैठा जा रहा है, वह भारी मन से कांस्टेबल दयाल के साथ खामोश चल देता है।
कुछ घंटों बाद राजनगर पुलिस स्टेशन में।
कामत सर, आपको क्या लगता है, अनिल गोम्स जो गायब है,
क्या वही मास्टरमाइंड है इस लूट की?
दयाल, पुरानी कहावत है कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। फिर सतीश, फयाज और साहिल तो 3 महीने से साथ काम कर रहे थे। चलो दयाल, वक्त आ गया है साहिल से संजीदगी से सवाल पूछने का।
सर, आपको साहिल पर शक है?
हाँ है। इस मछली को कम दाना देकर तालाब में इसलिए छोड़ा गया है ताकि ये गलत इंफॉर्मेशन देकर हमें गुमराह करे। ले साहिल, चाय है पी।
नहीं साहब, नहीं साहब, मैं बहुत थक गया हूँ, घर जाके आराम करूँगा।
आराम कर लेना रे, पहले ये चाय तो पी। टेंशन मत ले, ये पुलिस वालों की चाय है, ये होश में लाती है, बेहोश नहीं करती।
अच्छा एक बात बताओ, तुम चारों ने एक ही थर्मस से चाय पी थी ना?
जी जी साहब।
फिर ऐसा कैसे हुआ कि सतीश और फयाज दिन भर सोते रहे और तुम तुरंत गाड़ी चलाने लगे? ब्लड टेस्ट में भी उनके खून में भारी मात्रा में नींद की गोलियां मिली और तुम्हारे में नाम मात्र की। ये कैसे हुआ साहिल बनारसी?
क्या 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 पता साहब,
तुम्हारी इस नौटंकी में सतीश और फयाज भी शामिल हैं या तेरे अकेले की नियत बिकाऊ थी जो अनिल गोम्स ने खरीद ली?
साहब साहब साहब, ये आप क्या बोल रहे हो साहब, गोम्स के इरादे के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी।
साहिल जल्दी मुंह खोल दे वरना दयाल तुझे उल्टा लटकाकर चाय पिलाएगा। चाय मुंह से अंदर जाएगी और नाक से बाहर आएगी, वो भी खून के साथ। चल बोल।
सब सब सारी प्लानिंग गोम्स की थी।
बिल्कुल सही, नियम तो तोड़ना पड़ेगा साहिल भाई, तभी मंजिल मिलेगी।
हैं? कहीं तू बैंक के पैसे लूटने के बारे में तो नहीं सोच रहा है गोम्स?
सही कह रहा है साहिल भाई, बिल्कुल सही कहा। तेरी मेरी सोच कितनी मिलती है देख, रोज करोड़ों रुपए पेटियों में भरकर आते हैं, साला एक पैसा तक देखने को नहीं मिलता। भाई मैं तो कहता हूँ मौका देखकर मार देते हैं चौका, एक बार लूटेंगे साला जिंदगी भर एटीएम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बात तो सही है गोम्स, पर ये सतीश और फयाज मानेंगे?
उनकी चिंता मत करो, उनको मैं संभाल लूंगा, तू तैयार रह बस।
तो क्या सतीश और फयाज की भी नियत खराब हो गई थी तुम दोनों की तरह?
पता नहीं साहब, गोम्स ने तो कभी ऐसा बताया नहीं। गोम्स ने एक आदमी का बंदोबस्त करने को कहा था जो मेरा हिस्सा लेकर जाए।
हो तो इस प्लान में गोम्स, तुम और तुम्हारा एक आदमी यही शामिल थे?
नहीं साहब, गोम्स के साथ 2 बंदे और थे।
क्या वो लोग भी वैन में थे?
नहीं साहब, दूसरी गाड़ी में कैश वैन का पीछा कर रहे थे।
ओ तो पूरे रास्ते वो गाड़ी कैश वैन के पीछे रही?
जी साहब।
तेरा हिस्सा लेने कौन आया था?
सुनील यादव मेरा दोस्त है, वो भी सिक्योरिटी गार्ड है।
मतलब वैन लूटने के बाद सुनील यादव तेरा हिस्सा लेकर वहां से निकल गया? नींद की गोलियां कहां से मिली?
गोम्स को नींद की प्रॉब्लम थी, वो डॉक्टर की पर्ची थी ना उसके पास।
चाय का क्या चक्कर था रे, जो सतीश और फयाज को तो चढ़ी पर तुम दोनों को नहीं?
जी जी, वो गोम्स ने तो अपनी चाय वैन की खिड़की से बाहर फेंक दी और मैंने 2 घूंट चाय पी और बाकी खिड़की से बाहर फेंक दी। टोल नाका के बाद 1 किलोमीटर आगे तक ही सतीश और फयाज का विकेट डाउन हो गया। अब हमें अपना खेल दिखाना था।
यार साहिल, साहिल गाड़ी को फटाफट रेलवे फाटक वाली सड़क पे ले, सतीश और फयाज पूरी तरह से डाउन है, जल्दी कर।
बस 5 मिनट गोम्स, अभी पहुंचाता हूँ। थोड़ी ही देर में हमारी कैश वैन रेलवे फाटक वाली सड़क पे वीराने में खड़ी थी। गाड़ी रुकते ही गोम्स के दोनों बंदे पीछे वाली गाड़ी से औजार लेकर आ गए। हमने एक एक करके 3 ट्रंक तोड़ डाले और उसका कैश लूट लिया। मैंने वैन में ड्राइवर सीट के पास एक बैग छुपा रखा था। गोम्स अपने 2 बंदों के साथ लूट का माल लेकर जाने लगा और मेरे बैग में मेरा हिस्सा डालकर मुझे सौंप गया।
एक मिनट गोम्स, ये तो बता मेरे को कितना हिस्सा दिया है।
क्या यार साहिल, पूरे 25 लाख दिए हैं।
तूने कब गिने? और तू ये कैसे बोल सकता है कि ये 25 है?
अरे यार साहिल, अपन को मालूम है हर पेटी में 25 लाख है। कुल मिलाकर 3 पेटियों कितने हुए? 75 लाख ना। उसमें से 1/3 हिस्सा तुझे दे रहा हूँ साहिल, तुझे, क्योंकि आगे पुलिस के सामने तुझे ही ड्रामा करना है। बाकी के बचे हुए भाई हम तीनों में एडजस्ट कर लेंगे। चलता हूँ भाई, गॉड ब्लेस यू।
गोम्स और उसके दोनों बंदों के जाने के थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त सुनील यादव आया। मैंने अपना बैग उसे दे दिया, पर उसे भनक नहीं लगने दी कि बैग में लूट का कैश भरा पड़ा है। बस साहब, इतना ही हुआ था।
मतलब सतीश और फयाज इस प्लान में शामिल नहीं थे?
पता नहीं साहब, गोम्स ने कभी नहीं कुछ बताया, कुछ बताता ही नहीं था, एकदम बंद मुट्ठी की तरह।
गोम्स की मुट्ठी और उसका मुंह तो मैं खोलूंगा, बस तू ये बता दे कि अनिल गोम्स कहाँ मिलेगा।
साहब मैं सच कहता हूँ, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता।
उसके साथ जो दो लोग आए थे वो कौन थे?
साहब उनके बारे में कुछ नहीं पता, पर हाँ गोम्स ने एक बार उनका नाम बताया था, इमरान और हैदर। साहब उस दिन दोनों गोम्स के साथ चले गए, अब कहाँ गए किधर गए कुछ पता नहीं साहब।
दयाल, जरा साहिल साहब का वो बैग और इनके दोस्त सुनील यादव दोनों को उठाकर थाने ले आओ। तब तक मैं गुलमोहर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हॉस्पिटल से फोन आया था, सतीश और फयाज को होश आ गया है।
कुछ देर बाद गुलमोहर हॉस्पिटल में।
सतीश, फयाज, अभी अभी बेहोशी से उठे हो, उम्मीद करता हूँ दोबारा बेहोश होना पसंद नहीं करोगे तुम लोग। बोलो क्या करना है, मैं हाथ चलाऊं फिर जुबान खोलोगे, या फिर तुम बोलो मैं चुपचाप सुनता हूँ। मैं वैसे भी बहुत अहिंसावादी आदमी हूँ।
झूठ नहीं बोलूंगा साहब, गोम्स मेरे पास आया था, बातों बातों में पैसा बनाने की बात कर रहा था, उसके दिमाग में कुछ कांड चल रहा था साहब। वो मुझसे कहता, फयाज बस तुम्हारा साथ मिले तो जिंदगी मजेदार हो सकती है।
हाँ साहब, मुझसे भी कहा था, ऐसो आराम की बात कर रहा था साहब, लेकिन साहब मैंने कभी उसे बढ़ावा नहीं दिया।
मैंने भी साहब, हम ऐसी ओछी हरकत करने की कभी सोच नहीं सकते।
क्यों, जब साहिल कर सकता है तो तुम लोग क्यों नहीं? दूध के दूल्हे हो क्या?
कपड़े पे लगा दाग धुल सकता है साहब, पर जमीन पर लगा दाग नहीं। मैं बीबी बच्चे वाला आदमी हूँ साहब, पैसा हमको भी चाहिए साहब, लेकिन इसके लिए ईमान का सौदा कभी नहीं कर सकते। 8 साल से एजेंसी में काम कर रहा हूँ साहब, कितने बैंक का पैसा लेकर गया हूँ, कभी ऐसा नहीं सोचा।
अगले दिन राजनगर पुलिस स्टेशन में। साहिल, तेरे लिए एक खबर है, तू उस गोम्स को बचा रहा है जिसने तुझे धोखा दिया, तुझे बेवकूफ बनाया।
बेवकूफ मुझे?
हर ट्रंक में 75 लाख रुपए थे और तुझे सिर्फ 25 लाख दिए। अनिल गोम्स 2 करोड़ लेकर फरार है, अभी भी तू गोम्स को बचाएगा? और अब मुख्य समाचार सुन यार, तेरा दोस्त अनिल गोम्स जो तुझे धोखा देकर 2 करोड़ रुपए लेकर फरार हुआ था, उसे आजाद नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी में मौजूद उसकी फोटो ने उसे ढूंढने में काफ़ी मदद की। हमने उससे पूरे पैसे रिकवर कर लिया। पैसों के साथ शाम तक वह यहीं तुम्हारे साथ लॉकअप में होगा। खुशियां मना साहिल, खुशियां मना। शाम 7 बजे राजनगर पुलिस स्टेशन में। अनिल गोम्स, सिग्नल तोड़ने का बहुत शौक है ना तुझे, अब हड्डियां टूटेंगी तेरी। नो यू टर्न के मोड़ पर यू टर्न मारने वाले को पता ही नहीं चलता कि कब वन वे में घुस जाते हैं और उस वन वे का रास्ता सीधा जेल में आके खत्म होता है। वैसे ये जेल यात्रा तुम लोगों के लिए नई बात तो है नहीं, बस इस बार ये यात्रा थोड़ी लंबी भी होगी और तकलीफ भरी भी। अनिल गोम्स के बयान से यह साबित हो गया कि सतीश और फयाज का इस रॉबरी में कोई हाथ नहीं था। साहिल के स्टेटमेंट से भी यह साफ हो गया कि उसके दोस्त सिक्योरिटी गार्ड सुनील यादव को कोई अंदाजा नहीं था कि साहिल के दिए बैग में क्या है। सतीश, फयाज और सुनील, इन तीनों को रिहा कर दिया गया। साहिल और गोम्स तथा उसके दो दोस्तों को जेल भेज दिया गया। उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई है। दयाल, चोरी जरूरत पूरी करने के लिए की जाए या ख्वाहिशें, चोरी आखिरकार चोरी होती है। अगर कोई चीज हमारे पास नहीं है तो उसे दूसरे से छीन कर अपना बना लेने की सोच ही चोरी की जड़ है, फिर वो चोरी छोटी हो या बड़ी। चोरी के पैसे से ऐसो आराम की जिंदगी एक भ्रम है और कुछ नहीं। एनीवे दयाल, फाइनली केस इज सॉल्व नाउ। अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी लूट। यह कहानी हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब